शरीरं सुरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं
ओम शांति। तपस्या के 2 दिन पूरे हुए, आज का 3रा दिन, 1-1 दिवस। चेतना में नया उत्साह भरे, 1-1 दिवस आत्मक्रांति का दिन हो, 1-1 दिवस विद्रोह का दिन हो। किसके खिलाफ विद्रोह? स्वयं के खिलाफ। 1-1 दिवस संन्यास दीक्षा का दिन हो। कौन सा संन्यास? देह और संसार, जहां मिट्टी लगने लगे, संसार के सारे आकर्षण जहां गिर जाए। अब तक जिन सुखों को सत्य मानते थे वो मिथ्या भासित होने लगे। अब तक जिसे सुख समझते थे वो दुखों के भंडार लगने लगे। अब तक जिसे संबंध समझते थे वो कलयुग में बांधने वाले नारकीय बंधन लगने लगे। ऐसा वैराग का उदय हृदय में हो। हर दिन चेतना छूटती जाए, आगे बढ़ते जाए और अनुभव होने लगे कि आज वो जो बंधन तो जो कल तक इतना कड़ा था, आज उसकी पकड़ कम हुई है। अव्यक्त मुरली, 24 मार्च 1982। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे की होती है, तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है? सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। अव्यक्तवाणी, 24 मार्च 82। जब कोई चीज खो जाती है तो क्या होता है? उलझन। तो अभी अभी आंख बंद करेंगे और देखेंगे मेरे पास जो सबसे कीमती वस्तु है, स्थूल वस्तु, मोबाइल, पर्स, बैग, वो खो गया है। और वो खोने के बाद क्या अनुभव होता है. स्टार्ट. जो सबसे कीमती वस्तु है वो अचानक गुम हो गई. मन में किस तरह के संकल्प उत्पन्न हो रहे. हम शांति. और ब्राह्मण जीवन में सबसे कीमती वस्तु कौन सी है. सूक्ष्म प्यूरिटी. अब फिर से एक बार आंख बंद करेंगे और देखेंगे कि अगर ये प्यूरिटी खो जाए और सबको इसके बारे में पता चल जाए तो मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होंगे. सब कुछ है, बाकी कुछ पैसा है, धन है, संपत्ति है, परंतु अब लोग उस दृष्टि से नहीं देख रहे. वो इस दृष्टि से देख रहे कि ये आत्मा काम विकार के वशीभूत हो चुकी थी, हुई है. इस स्थिति का अनुभव करेंगे. इसमें क्या अनुभव होगा. किस तरह की बातें लोग कहेंगे. अंतर्मन में क्या होगा. बाबा क्या कहेंगे. 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पवित्रता का जीवन और एक दिन अचानक हार. हम शांति. तो रूहानी स्थिति में जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्या होता है. आत्मग्लानि, दुख, गिल्ट, कॉन्शियसनेस जो आत्मा को मार डालती है. बाहर से सब कुछ है परंतु अपराध भाव. अपराध भाव क्या कर देता है. आत्मा को खाते रहता है, कचोटते रहता है. वो टीस उठती है अंदर. और जब जब ऐसी आत्मा मुरली सुनेगी, सत्संग में बैठेगी ब्राह्मण परिवार के साथ, अंदर से बेचैनी रहेगी, दुख रहेगा, किसी को बता नहीं सकेगी, अंदर छिपाने का भाव रहेगा. बाकी सब तो बता देगी पर ये नहीं बताएगी. किसी ने पूछा तो फिर उसको गोल गोल कर देगी. तो रूहानी स्थिति में जो भी पवित्रता को खोता है अर्थात ब्रह्मचर्य को खोता है अर्थात काम विकार द्वारा पराजित होता है उसके अंदर क्यों, क्या, कैसे कि उलझन. उलझन अर्थात कंफ्यूजन. ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति है कि मन बहुत स्वच्छ है, क्लैरिटी ऑफ माइंड. जब उसे पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हर रात सोते समय इस भाव से सोता है कि आज का दिन कैसा रहा. बहुत अच्छा रहा. कहीं कोई अवज्ञा नहीं हुई, कहीं कोई श्रीमत का उल्लंघन नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम, कल का वरदान था ना, लकीर के अंदर रहे। इस भाव से, तृप्ति से, संतुष्टता से सोना बहुत बड़ी प्राप्ति है। आत्मग्लानी से, दुख से, कोई लोग होते हैं संसार में बड़े सेंसिटिव अच्छे लोग होते हैं, अगर वो किसी कारण से झूठ बोलते हैं दिन में तो रात में सो नहीं सकते, जब तक वो उस व्यक्ति को बता नहीं देते कि मैंने झूठ बोला था, उनको नींद नहीं आती है। ऐसा सबको नहीं होता है, ये बड़ी अच्छी अच्छी आत्माएं जो संसार की होती है, जो धार्मिक नहीं है परंतु सेंसिटिव नेचर है जिनका, जिनको बचपन से उनके माँ बाप ने सच बोलना सिखाया है, छोटी छोटी बातों में भी वो झूठ नहीं बोलते, उनको अगर किसी कारण से झूठ बोल दिया तो फिर नींद नहीं आती है, वास्तव में नींद नहीं आती है, क्योंकि झूठ बोला है दिन में। तो बाबा कहते हैं अगर पवित्रता कोई खोता है तो अंदर क्यों किया और कैसे की उलझन होती है, तो समझा कैसे चेक करना है। सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। तो आज हम तीसरे दिन के पुरुषार्थ में फिर से 6 बातें देखेंगे, अर्थात जो करनी है। सबसे पहला विषय सुख का दोष क्या है, ये देखना है। यौन सुख का क्या दोष है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्या डिफेक्ट्स है। 8 प्रकार के दोष है हर इंद्रिय सुख में, जो भी इंद्रिय सुख है, कुछ खाया सुख मिला उसमें कुछ तो दोष है, इस इंद्रिय ने कुछ किया उसमें दोष है, आंखों ने कुछ देखा नैनाभिराम दृश्य, आंखें आकर्षित हुई, कानों ने कोई बहुत अच्छा सुन लिया आकृष्ट हुई, हाथों ने कुछ स्पर्श किया आकृष्ट हुई, नाक ने कुछ सूंघा आकर्षण हुआ। सबसे पहला काम आज का है डिफेक्ट्स, दोष देखने हैं, इंद्रिय सुखों में क्या दोष है। अष्टबाहु है वो, ऑक्टोपस है, अष्टबाहु पता है ना, ऑक्टोपस 8 हाथ होते हैं उसके, इंद्रिय सुख वैसा ही है, पकड़ लेता है और फिर छूट नहीं पाती है चेतना, बंद जाती है उसमें। हर व्यक्ति जो दारू पीता है, पहली बार जब उसने दारू पी थी अच्छी लगी थी क्या उसको, एकदम कड़वी कड़वी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी उसको, परंतु फिर धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ, दृढ़ता के साथ जारी रखा और उसमें वो परफेक्ट और एक्सपर्ट बन गया एक दिन, उस महकमे में टॉप लेवल का पियक्कड़। ऐसे नहीं बना है, मेहनत की है। एट फर्स्ट मैन ड्रिंक्स द ड्रिंक, देन ड्रिंक टेक्स द ड्रिंक, एंड देन ड्रिंक टेक्स द मैन, ऐसी कहावत है। सबसे पहले मनुष्य दारू को पीता है, फिर दारू दारू को पीती है, और फिर दारू मनुष्य को पी लेता है एक दिन। सबसे पहला दोष है अटैचमेंट, इंद्रिय सुख, कुछ भी सुख भोगा इस संसार का कि तुरंत स्लेव मेंटेलिटी हो जाती है, वो सुख हमें गुलाम बना देता है, इसको कहते हैं स्लेव। फिर हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो सुख कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी, अगर भोक्ता भाव से उसको भोगा कि गए, वो एक अटैचमेंट उत्पन्न कर देती है, कोई भी इंद्रिय सुख, संसार का कोई भी सुख। दूसरा, उसमें बहुत कम सुख है, ज्यादा दुख ही है, यह दूसरा दोष है इंद्रियों का, इंद्रिय सुख का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, कि सुख कम है दुख ज्यादा है, परंतु दुख दिखाई नहीं देता, क्या दिखाई देता है, सुख ही दिखाई देता है। डायरिया हो रहा है पर इतनी बढ़िया चीज बनी है, क्या करें अब, क्योंकि आज ही बनी है, ऐसी बनती नहीं है, 6 मास के बाद बनी है, चलो साल में एक बार बनी है, थोड़ा तो खाना बनता ही है, खाया पता है कुछ गड़बड़ होगी और हो गई। जो भी इंद्रिय सुख है उसमें सुख केवल भासमान है, अधिक तो दुखी है, वो दुखी है सुख के वस्त्र पहने हुए, अनहैप्पीनेस मास्करेडिंग एज हैप्पीनेस. वो दुख है परंतु सुख का आवरण है, ये उसका दूसरा दोष है. इसलिए संसार ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं कुछ पीना नहीं, ऐसा नहीं कुछ देखना नहीं, ऐसा नहीं कुछ सुनना नहीं, सब कुछ करते हुए उनके दोष भी बुद्धि में रखने हैं तो साक्षी भाव रहेगा, नहीं तो तुरंत भोक्ता भाव से उसको भोगना चालू कर देंगे. और भोक्ता भाव जहां आया वहां साक्षी से सब नीचे गिर गए, साक्षी रह नहीं पाएंगे, साक्षी केवल सिद्धांत रह जाएगा. फिर कुछ खा रहे हैं, ये भाव सजगता, मैं खा रहा हूं, चलना है मैं चल रहा हूं, इस सजगता के साथ अपनी जो प्लेट है ना, प्लेट की साइज थोड़ी छोटी कर देनी है खाने की. छोटी प्लेट रहेगी ना तो कम चीजें रहेगी उसमें, और खाने की जो क्रिया है उसको स्लो कर देनी है धीरे धीरे. क्योंकि बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, गन्ने का जूस मिल रहा है, वो कहता है कितना दो, वो कहते हैं चार ग्लास दो, प्यास बहुत है. और पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चार लिया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है. वास्तव में इतनी प्यास थी नहीं, इतनी प्यास थी नहीं. वो एक ही ग्लास को अगर धीरे धीरे पीता व्यक्ति, और पीने की जो क्रिया है वो माइंडफुल अगर हो जाती, उसको देख देख के आह कितना अच्छा है, ग्लास कितना अच्छा है, उसका रंग कितना अच्छा है, उसकी टेस्ट कितनी अच्छी है, एक एक को देखते देखते उस पर चिंतन करते करते उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, कितना लाइव फूड है, ये हाई वाइब्रेशनल फूड है, प्रकृति प्रदत्त है, भगवान का दिया हुआ है. उन गन्नों को किसने पकाया, सीधा सन कुक्ड है. इस चिंतन के साथ खाएंगे ना तो इतना पीने से ही पेट भर जाएगा. पेट क्यों नहीं भरता, क्योंकि भोक्ता भाव से खाते हैं, भोक्ता भाव से पी लिया. इसके लिए जूस पीना, कैसे पीना के लिए कहते हैं जूस को, चम्मच से, चम्मच से. जूस को पीना नहीं होता है, जूस को खाना होता है. और जूस पीते भी है तो पहले सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाए फिर पाए. सीधा लिया ग्लास और डाल दिया अंदर, ये विधि नहीं है किसी भी जूस को पीने की. धीरे धीरे प्यार से घुमा घुमा के इधर मुंह में घुमाना है उसको, फिर अंदर डालना है, मुंह में घुमाना है फिर अंदर डालना है. और जितना हो सके एकांत में बैठकर, लोगों के सामने हम कैसे करते, फटफट पी लेते, खड़े खड़े नहीं, बैठ के बाबा के ट्रांसलेट तो नहीं, अपने कमरे में बैठ जाओ शांति से और आराम आराम से धीरे धीरे पिएंगे तो भोक्ता भाव नहीं रहेगा, साक्षी पुष्ट होगा. वो पीने की क्रिया केवल पीने की क्रिया नहीं रह जाएगी, योग की क्रिया हो जाएगी. और ये वाला जो है ना, ये भी इसमें देखना है, अगर बहुत फास्ट कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं तो क्या होता है, उसमें ज्यादा दुख ही होगा, ज्यादा दुख होगा. ये दूसरा, स्वाद लेते हुए, टेक्सचर देखते हुए, कलर देखते हुए आस्वाद उसका, ये सब भाव से. पर फटाफट जो ले लेता है खा लेता है फटाफट, हमको टाइम कहाँ है, यही करते बैठेंगे आधा घंटा, हमको तो फटाफट सेवा में जाना है, फटाफट वो करना है. जब ये कर रहे हैं तो सेवा में जाना है, जब सेवा में गए तो उसको भी जल्दी जल्दी करना है, जल्दी 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 हर चीज जल्दी जल्दी करनी. वो सेवा पूर्ण हुई उसके आगे का जल्दी करना है, हर चीज जल्दी करनी है. ये जो हरी है ये वरी को जन्म देती है, वरी सारी बीमारियों की जन्मदाता है. तीसरा क्रेविंग, क्रेविंग अर्थात तलब. कोई भी चीज को भोक्ता भाव से स्वीकार किया तो क्या होता है, क्रेविंग होती है उसकी. स्मोकिंग कर लिया व्यक्ति ने, चार दिन से स्मोकिंग नहीं कर रहा है, क्या होता है, तलब होती है उसको. अगर नहीं मिली स्मोकिंग तो कंपन आने लगते हैं हाथ में, और कुछ कुछ होने लगता है उसके शरीर में, कुछ होने लगता है, एडमिट करना पड़ता है, विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं इसको. वो सारे विड्रॉल सिम्टम्स काम विकार में सबसे ज्यादा है. ये साधना ब्रह्मचर्य की है. जितनी इंद्रिय है शरीर में, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंद्रिय आंख नहीं है, जनेन्द्रिय. ये सबसे पावरफुल इंद्रिय है, उसका जो एडिक्शन है उसके सामने मुख का, जबान का, ये सारे एडिक्शन फीके है। सारा संसार एक ही तो विकार में जकड़ा हुआ है, काम। यौन केंद्र है संसार के सुख का, यौन सुख सबसे बड़ा सुख है। अगर किसी सुख की कोई बात करता है तो उसकी कंपैरिजन इस यौन सुख से किया जा सकता है, क्या इससे भी बड़ा है? वो कहता कोई नहीं, बोलता कोई नहीं, चर्चा कहीं नहीं है, पर बड़ा सबसे यही है, क्योंकि सारी मानवता इसमें डूबी हुई है। सारी लिटरेचर, सारे साहित्य, सारी किताबें, सारे बुक्स, सारी फिल्में, सब इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। सारे मनुष्यों के संबंध इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, सब कुछ पागल कर रखा है इसने, सबको विक्षिप्त कर दिया है मानवता को इस विकार ने। और विकार है ये कोई मानता ही नहीं। अगर कोई ब्रह्मचर्य की चर्चा करे तो पहला तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि क्या ब्रह्मचर्य का सुख काम सुख से अधिक है या नहीं, और ब्रह्मचर्य का सुख को पता भी कैसे चले। काम के सुख का तो अनुभव है लोगों को, ये तो इसके लिए तो साधना है, ये कब करे और कैसे करे, और करे भी तो उसकी छोटी सी झलक मिलती है, और फिर ये सुख तो ज्यादा खींचता है। जन्म जन्म तो इसी सुख का अनुभव किया है। जिस व्यक्ति ने किसी स्त्री या पुरुष का चेहरा भी नहीं देखा वो जन्मांध, उसमें भी काम विकार उतना ही प्रबल है जितना एक आंख वाले में है। ये संबंध आंख का है ही नहीं, आत्मा का है। आत्मा में सबसे जो गहरी छाप है वो काम विकार की है, और किसी विकार की नहीं है। उसके सामने ये बाकी तो बहुत ही लिंबू टिंबू है एकदम। इसके लिए क्रेविंग उत्पन्न होती है उससे, क्रेविंग अर्थात तलब। नहीं मिला तो बेचैनी, भयंकर बेचैनी। इसीलिए तो सारी मुरलिया केवल इसी एक विकार को जीतने के लिए है। भगवान का आगमन ही ये इसके लिए हुआ है, क्रोध के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, मोह के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, ये एक ही काम के लिए हुआ है। क्योंकि उसको पता है ये ऐसे फंसे हुए है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाना काम महाशत्रु है, काम विकार है, ये है वो, उससे नहीं होगा कुछ, कुछ और करना पड़ेगा। उसको तो भस्म करना है, उसकी जड़ें बहुत गहरी है चेतना में, सबसे ज्यादा गहरी, उसको वहां से निकालना है, सबकॉन्शियस माइंड से। वो केवल मैं आत्मा हूं कहने से नहीं निकलेगा, वो तो द्वापर से बोलते आ रहे क्रेविंग। देखना है कि अगर मैं ये खा लेता हूं, ये पी लेता हूं, ये चीज का उपभोग कर लेता हूं तो वो वहीं पूरी नहीं हो जाती। अरे आज जन्मदिन है, आज खा लो जितना खा लाए, ऐसा नहीं होता है। वो क्रेविंग उत्पन्न करेगा। एक एक बार भी जिस चीज को छोड़ दिया उसको छोड़ दिया बस, एक बार भी उसको भोगा तो गए, गिर गए, एक बार भी। क्रेविंग, उसके बाद में डी, डिसेप्टिव। सब धोखेबाज है, सारे सुख क्या है, धोखे देने वाले है, दगाबाज, बड़े ठग है एक एक सुख। ऊपर से लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं है, ठग है वो, दबोच लेता है पंजे में। तो दोषों का चिंतन करना है, क्या करना है, दोष का चिंतन करना है कि इसमें धोखा है, सूक्ष्म धोखा। उसके बाद में पांचवा ई, बहुत एफर्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो प्राप्ति के लिए, ऐसे ही नहीं मिलता है। एक रात के लिए जीवन भर का इंतजार, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इन सुखों के लिए, तब कहीं जाके थोड़ा सा मिलता है, और मिलते ही दुख होता है थोड़ी देर के बाद ही, क्षणिक, थोड़ी देर के बाद ही दुख में रूपांतरित हो जाता है। तो एफर्ट से। उसके बाद में छठवा, फ्लिटिंग। फ्लिटिंग अर्थात क्षणिक, ट्रांजिटरी, अल्पकालिक है, थोड़े देर के लिए है बस। अगर उस पल को रोक दिया गया तो बस जीत तुम्हारी है। अभी टेम्पटेशन हो रहा है, अभी जाके ये करूं, वो करूं, ये देखूं, वो देखूं, इच्छा होती है ना, ये मूवी देखूं, ये देखूं, वो देखूं, इसको फोन लगाऊं, उसको फोन लगाऊं, ये अल्पकालिक है, इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी स्पिरिचुअल इमरजेंसीज में आता है ये काम विकार। उसका उठना वो वेव की तरह है, एक तरंग की तरह है, शांत भी हो जाएगी, पर उस समय व्यक्ति के वश में कुछ भी नहीं रहता है। जितने संसार में कारागार है और जितने लोग उसमें बंद है, उनसे जाके पूछो ये तुमने दुष्कृत्य कैसे किया, क्यों किया, वो कहते 10 मिनट में पता नहीं क्या हो गया था, कंट्रोल ही नहीं रहा, इसमें सारा कंट्रोल खो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसी अनकंट्रोल्ड स्टेज में विकर्म होते हैं। तो देखना है ये सारे सुख संसार के जो भी है, जो भी सुख है, सब कैसे है, अल्पकालिक है, और वो आज है कल नहीं रहेंगे, आज घर है कल नहीं रहेगा, ये सब अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं आज, कल कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ मनवाह में तुम हो ये भूलो नहीं। हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसे राम ने 14 वर्ष बिताए जंगल में। इसलिए एक दूसरा एक धारणा दे रहे हैं इस भट्टी के लिए, 21 दिन जो कर सकते हैं वो 21 दिन में जमीन पर सोए, चटाई पर, ये सबसे अच्छी धारणा है, सारी बैक प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी। इस पर भी रिसर्च है कि मैट्रेस पर सोने के क्या क्या नुकसान है, जो चाहते हैं ढूंढना वो जाके ढूंढो मैट्रेस पर सोने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इस भट्टी में एक चीज तो हमेशा के लिए ही छोड़ दो 21 दिनों में, सबसे पहला पिलो हटा दो, उसको कोई काम ही नहीं है, वो सुविधा है, एक जरूरत ही नहीं है जिसकी, उसकी हमको एक आदत पड़ गई, एडिक्शन है वो, पिलो उसको हमेशा के लिए हटा दो। और बेस्ट मेथड, बेस्ट स्थान है सोने का नीचे। दरी बिछा लो। चलो जिनके पास जगह कम है उनकी बात अलग है, परंतु अगर खाट पर सोना है तो वो जो खाट है वो भी कम से कम वो बिस्तर हो, गद्दा जिसमें थोड़ा चुभे, कड़क हो वो, ये मोटे मोटे मैट्रेस, डनलप की मैट्रेस में आत्मा भी डनलप की मैट्रेस में सो जाती है, सुख सुविधाओं में तो तपस्या ही भंग हो गई है। तो ये धारणा बहुत अच्छी है। हमें याद है जब हमने पहली बार ये काम चालू किया था कुछ सालों पहले, ऐसा दर्द आधी रात को उठ के सीधा बिस्तर पर चले गए, बिल्कुल सहन नहीं हुआ, इतना दर्द होने लगा, फिर दूसरे दिन फिर वैसा ही, तीसरे दिन फिर वैसा ही, और फिर अमृत वेला लेट, जल्दी उठते थे क्योंकि अभी जो बेड पर जो नींद आई वो बहुत अच्छी आई, तो वो थोड़ा लेट हो गया उठने में, 3:30-4:15 उठते उठते, पर धीरे धीरे इसकी भी आदत पड़ जाती है, फिर यही अच्छा लगने लगता है, फिर वो अच्छा ही नहीं लगता है, उसमें खाली बैठकर कुछ करना है तो वो करते हैं, बाकी सोने का काम है तो नीचे जमीन पर, फ्लैट सरफेस, जिसमें सुबह अपने आप नींद अच्छे से खुलती है, क्योंकि कोई उसको सुख नहीं मिल रहा है ना। उठने के बाद अच्छा लगता है, ये अब ठीक है। तो ये पिलो को तो हमेशा के लिए आउट कर देना है, और हो सके या तो जब जब समय मिले, जो दिन में सोते हैं वो कम से कम प्रैक्टिस के लिए तो इस पे सोए, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पहले प्रैक्टिस कर लो, चलो आधा घंटा एक घंटा प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को तपाना है, शरीर को क्या करना है, तपाना होता है, जितना उसको भोग विलास में डालो ये सारी चीजें होगी, ये उसमें होगा, क्रेविंग होगी उसकी, वही अच्छा लगता है उसको। तो फ्लिटिंग, अगला 7, ज्ञान का शत्रु है इंद्रिय सुख, काम विकार ज्ञान का शत्रु है, काम भोग ज्ञान का शत्रु है, यौन सुख ज्ञान का शत्रु है, उसको इस रीति से देखना है, मन में कठोर भाव जागृत होंगे, फिर अगर ये कर रहे हो तो फिर वहां पर ज्ञान नहीं है। काम विकार की स्थिति में कोई ज्ञान है क्या, नहीं है, ज्ञान लोप हो जाता है उस उन पलों में, कम हो जाता है, या तो रोमांस या तो ज्ञान, या तो संसार में अफेयर या तो ज्ञान, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। रोमांटिक रिलेशनशिप भी चालू है यहां पर और ज्ञान भी चालू है, बैलेंस, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी एच हैबिट फॉर्मिंग है, हैबिट फॉर्मिंग अर्थात संस्कार बन रहे। एक बार खाने से वहां रुक नहीं गया, वो उसका क्या हो गया है, संस्कार बन रहे। या आठ दोष है हर इंद्रिय सुख में। एक गीत सुना बहुत अच्छा लगा, क्या क्या होता है, फिर से सुनना है, फिर से सुनना है, फिर से सुनना है, वो गीत ही एडिक्शन बन गया है, वो गीत ही एडिक्शन बन गया है। किसके लिए, उससे छूट नहीं पा रही है, सारे दिन भर वही वही गीत गुनगुना रहे हैं। ये गीत गुनगुनाना क्या ज्ञान की अवस्था है? नहीं, गीत अच्छा है, सुना साक्षी भाव से, सुना अच्छा भी लगा, और उनके शब्दों की तरफ कहां ध्यान है हमारा, हमारा तो किसने गाया और वो म्यूजिक कैसा है और किस पर फिल्माया गया, उस पर ही ध्यान है। वो गीत तो खो गया। सबसे पहला काम आज जो करना है वो है इंद्रिय सुखों के दोषों का चिंतन करना है। और ये तो खाली पॉइंट सुना दिए, ये केवल एक कोरा ज्ञान था। अब इस ज्ञान को एकांत में बैठकर चिंतन करना है, क्या क्या होता है इंद्रिय सुखों में। गुलामी, ज्यादा दुख, कम सुख, क्रेविंग, धोखा, क्या क्या हो रहा है इसमें, ये सारे सुखों में कहीं ना कहीं धोखा है, आत्मग्लानी है। मन कहता है नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा का, आत्मा साधना के लिए है, इन भोगों के लिए है ही नहीं, ये हमारा स्वभाव ही नहीं है, ये तो लिप्त कर देती है उसको, लिपायमान कर देती है आत्मा का, विवेक का खून। तो ये सब हमारा काम ही नहीं है, उसकी वास्तविक स्थिति ही ब्रह्मचर्य है। तो ये पहला काम है आज का, क्या चिंतन करना है, दोष क्या क्या है, भोगते हुए भी दोष का चिंतन करते रहना है, ताकि वो जो इंटेंसिटी से जो भोग रहे हैं वो इंटेंसिटी कम से कम कम होगी। ये चीज बनी है मेरी पसंद की चीज है, खाओ पर धीरे धीरे, अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, निर्णय रहित सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस। दूसरा काम, ये जो अव्यक्त वाणी है, पवित्रता पर सबसे पावरफुल अव्यक्त मुरली है, 24 मार्च 1982, इस अव्यक्त मुरली का आज अध्ययन करना है सभी को, इस अव्यक्त मुरली को सबको आज पढ़ना है। 24 मार्च 1982, पूरी की पूरी मुरली पवित्रता 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 पवित्रता, एक एक लाइन में शब्द है। बाप आए हैं तुम्हें पावन आत्माओं को देख रहे, पावन आत्मा बनाने के लिए। पवित्रता है, इसकी क्या परख है, कब कहा जाएगा पवित्रता, कब कहा जाएगा पवित्रता खो गई है, उसके निर्णायक क्या है, उसके मापदंड क्या है, वो सारी बातें है इस मुरली में। तो ये आज का दूसरा काम है, आज सारे दिन भर जो करना है। आज तीसरा काम, जिस भी स्थान पर जाएंगे और जिस भी व्यक्ति को देखेंगे, सोचना है मैं इसे पावन कर रहा हूं। किचन में जा रहे हैं, मैं किचन को पावन कर रहा हूं। डाइनिंग में जा रहे हैं, मैं डाइनिंग को पावन कर रहा हूं। नकी पर जा रहे हैं, नकी को पावन कर रहे हैं। अनादरा पर जा रहे हैं, मैं अनादरा को पावन कर रहा हूं। अपने कमरे में जा रहे हैं, किस लिए जा रहा हूं, अपने कमरे को पावन करने के लिए। वॉशरूम में जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, वो बाथरूम के वायुमंडल को भी पवित्र करने के लिए जा रहा हूं। हर चीज को मुझे पावन करना है, हर स्थान को मुझे पावन करना है, एक स्थान। दूसरा, हर वस्तु को जिसको मैं हाथ लगाऊंगा, ये पेन को हाथ लगाऊंगा ना, ये पावन। ये डस्टर को हाथ लगाऊंगा, पावन। हर वस्तु जिसको मैं हाथ लगाऊंगा, आज कपड़ों को हाथ लगाया, पावन। अपने को हाथ लगा दिया, पावन। हर वस्तु को जिसको मैं आज हाथ लगाऊंगा, वो पावन। चश्मे को हाथ लगाया, हाँ अभी ठीक दिख रहा है, पावन। उस पे दूसरा अभ्यास है एक। तो वस्तु, व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को देखूंगा उसे मुझे छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। आज तो जो सामने आया वो गया, उसको ऐसे पूरा धड़ 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 पूरी गन लेके ही घूमना है। एक दिखा कि शूट, शूट एट साइट। तो आज का अभ्यास कौन सा है, शूट एट साइट, कोई दिखा कि शूट कर देना, सीधा गोली दाग देना। और कभी तो जरूरत पड़ी तो हाथ गोले होते हैं, वो फेंक देना भी था, बिल्कुल सीधा। बोरी भीड़ वगैरह दिखी ना कोई, तो हाथ गोले फेंक देना प्यूरिटी के। तो जो भी आत्मा दिखे उसे मुझे क्या करना है, एक सेकेंड के लिए प्यूरिटी का करंट उसको भेज देना है सीधा। इतने सारे लोग मधुबन में आते रहते, मधुबन में आंगन में बैठ जाओ, दोपहर में काम नहीं है तो क्या करना है, वहां बैठे बैठे लोग आ रहे हैं, अपना शूटिंग चालू जारी कर दो, स्पिरिचुअल शूटिंग बैठ जाओ और स्पिरिचुअल शूटिंग चालू। और ये इनकॉग्निटो शूटिंग है, किसको पता भी नहीं चलेगा हम कैसा अहिंसक शूटिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस बैठे ही आंखों से शूट करना है आत्माओं को, इन आंखों में ऐसी प्यूरिटी भर देनी है कि जो जो देखेगा वो घायल, कोई इधर गिरा कोई उधर कोई गया ऊपर तो ये है आज का तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास। चौथा जो अभ्यास है वो जीवन भर करना है, वो है स्नान। स्नान स्नान जीवन भर करते नहीं बैठना है, स्नान की विधि अल्टरनेट शॉवर, इसको क्या कहते हैं आशीष भाई किधर है, हाँ अल्टरनेट शॉवर। अल्टरनेट शॉवर अर्थात शुरू करना है गर्म से पर एंड स्नान करना हमेशा ठंडे पानी से, चाहे कितनी भी ठंडी रहे। इससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों का निग्रह, इसको कहते हैं जेम्स बॉन्ड शावर अल्टरनेट शावर, स्कॉटिश शावर। शुरू करना है हमेशा गर्म पानी से और फिर धीरे धीरे एंड करना है ठंडे पानी से। मतलब जब निकलेंगे बाहर तो हमेशा ठंडा पानी ही से ही स्नान किया हुआ हो, तो ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी बाहर निकलने के बाद। गर्मी के मौसम में ये तो एक अभ्यास है, इसका अंत है फुल ठंडे पानी से ही नहाना है, पर अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है। अगर ऐसा कह दिया तो नहाना ही फिर तो जैसे पेशेंट का स्पंजिंग होता है ना, खाली बस वैसा करके आ जाएंगे, एक कपड़ा लेके इधर पहुंचा चलो हो गया ठंडा तो हिम्मत कहां होती है, शॉक लगता है, शॉक करंट लगता है सीधा, और ये जो हार्ट रेट है ना उसमें बढ़ जाता है, ऐसा धक 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 जोर जोर से धड़कने लगता है हार्ट, ऐसी आवाज आने लगती है क्योंकि वो शॉक जैसा लगता है। जबकि अभी गर्मी है फिर भी पहले शुरुआत गर्म से ही, और कोई कोई लोगों को तो ऐसी एडिक्शन हो गया इसका, कुछ भी मौसम हो एकदम गर्म पानी चाहिए। ऐसे अगर सेंटर पर चले जाओ जहां गर्म पानी नहीं तब क्या करोगे, तो ये तो इमरजेंसी में हम तो तैयार ही नहीं है इसका मतलब। विदेश में इसके पहले भी सुनाया था, एक स्थान है उसका नाम मैं भूल रहा हूं, एक प्रिजन है जहां पर कैदियों को रखा गया, आजू बाजू पूरा समुद्र ही समुद्र है और ठंडा पानी है, इतना आइसी कोल्ड वाटर है, पर वहां का कोई भी प्रिजनर भाग के नहीं जाता है, खुले दरवाजे भाग के कोई नहीं जाता, क्योंकि रोज उनको गर्म पानी दिया जाता है नहाने के लिए, एकदम गर्मा गर्म। कौन इसके डुबकी लगाएगा उसमें पानी में, ठंडी से इतना डर बैठ गया है सबके मन में, सब प्रिजनर्स को एकदम हॉट वाटर दिया जाता है नहाने के लिए, तो वो तो कूदने की हिम्मत ही नहीं करता है कोई। ये ऐसा है, तो ये तो बड़ी युक्ति है, स्ट्रेटेजी है सोचने वाले की, उनको सूख नहीं, उनको लग रहा है कि हाँ ये तो क्या प्रिजन है, क्या ये पहले दिन से गर्मा गर्म पानी है, तो घर में भी नहीं मिलता था जो यहाँ मिल रहा है, पर वो युक्ति है उनकी, वो तो क्योंकि इर्द गिर्द पूरा टापू है, वो निकल नहीं सकता है कोई उसमें से, इसलिए ये एक अभ्यास है ब्रह्मचर्य का, स्कॉटिश शावर, अल्टरनेट शावर, या कोई कोई कहते हैं ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म, अल्टरनेट करते जाओ, अभी गर्म अभी ठंडा, अभी ठंडा अभी गर्म, अभी ठंडा अभी गर्म, पर निकलते समय ठंडा। और एक चीज इसमें जोड़नी है, नहाने के बाद शरीर को रगड़ना है, वो जो होता है ना खादी खादी टॉवेल, या तो वो कड़क वाला, जिससे एक एक अंग ये जो पोर है ना पूरे ये खुल जाने चाहिए। कोई लोगों के पास टाइम ही नहीं है, नहाया फटाफट उड़ा इधर घुमाया चलो 5 मिनट में, इसलिए तो रोग होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकलने का एक मार्ग है पसीना, ये पोर्स, मल मूत्र, लंग्स और स्किन, ये फोर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन है जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये जो चमड़ी है नहाने के बाद उसको रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के लाल हो जानी चाहिए थोड़ी, जैसे भैंस को या घोड़े को, कैसे उसको वो उसका एक स्क्रबर भी आता है कपड़े वाला, उसको हाथ में ऐसा डाल के ऐसे 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 करना होता है। हाँ कैसा भैया सूखी तुरई का, राइट। तो वो या तो कोई भी जो आपके पास है या तो ले लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो खादी का तो ले ही सकते, सिंपल है। तो ये क्या होगा, कौन सा अभ्यास, चौथा अभ्यास, स्नान और रगड़ना, ये चौथा अभ्यास आज का। पांचवा अभ्यास भोजन, ब्रह्मचर्य की आज की धारणा। ये चार चीजें जो आज इसमें बताएंगे ये हमेशा के लिए ही छोड़ दे तो बहुत अच्छा, ये हमेशा के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए। आज के दिन यहीं बैठे बैठे मधुबन की भूमि पर संकल्प करके इसे गुड बाय सायोनारा। सबसे पहला अचार पिकल, ये आज की तारीख के लिए नहीं है केवल, हमेशा के लिए है। अचार आचार को भ्रष्ट करता है, विचारों को भ्रष्ट करता है, आचरण को भी भ्रष्ट करता है। संसार ये हमारा आहार ही नहीं है, उसको रखा हुआ है हाई, बहुत हाई सॉल्ट होता है उसमें, और वो सड़ा हुआ है, पहले से ही सड़ा हुआ है, वो शरीर में जा रहा है, यहां सड़ता है वो पचता कहां है, और दूसरी जो चीजें आती है साथ में उसके, उसको पचने नहीं देता है वो। इट इज इनडाइजेस्टिबल, इट डजंट अलाउ अदर्स टू डाइजेस्ट, ये है वो। और इसमें कितनी वेराइटीज है, चीजें किस लिए, आम किस लिए बना हुआ है, तुरंत लो और खाओ, नींबू किस लिए है, काटो और खाओ, पियो उसका रस, इसलिए बना हुआ है। थोड़ा खाओ जितना खाओ, क्यों डायरेक्ट खाओ जो है उसको, वो कितने दिन से रखा हुआ है, और जितना लंबा रखते गए उतना और उसको टेस्टी बनता है। कोई भी अचार, कैसा भी अचार, वो स्वाद मात्र है। अभी आठ दोष देखे इंद्रियों के, वो सब उसमें लागू होते हैं, ये पहला काम। दूसरा जैम, जैम टमाटर कितना अच्छा है, काटो उसको और खाओ। टमाटर एक ऐसी चीज है संसार की, जैसे ही उसको पकाया जाता है वो अल्कलाइन से एसिडिक बन जाती है। इसके लिए अगर टमाटर किसी भी रूप में पकाया जाता है तो वो हमारा आहार नहीं है, एटलीस्ट इस एक बात के लिए। टोमेटोज जो है, द मोमेंट दे आर कुक्ड दे बिकम एसिडिक। इसके लिए जब भी टमाटर लेना हो अलग से ही लेना चाहिए, कट के कच्चा, और वो ज्यादा अच्छा भी लगता है। कोई भी सब्जी लो उसके साथ में अलग से बाहर रखो, उसको पकाते ही उसका गला घोट देते हैं, और कैसा बनता है देखा है उसको। ये इधर फ्रेश वाला रखो एक काटा हुआ, और उधर दूसरा वो पका के निकालो, कैसा दिखता है बेचारा, उसकी क्या हालत हो गई है। देखा है उसका चेहरा, तो देखो उसका पूरा लटका हुआ है चेहरा, जैसे किसी ने उसको कूट दिया है, गला घोट दिया है बेचारे का, हत्या कर दी है उसकी। दिखने को तो देखो कैसे दिखता है, ये देखो कैसा हंसते हुए खिला हुआ, कितना उसका, उसके चेहरे पर कैसी रौनक है। टमाटर को देखते ही आह मुंह में पानी आ जाता है, और ये देखो बेचारा, अरे रे 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 रे, पूरा चक्की में पिस गया विकारों की, ऐसे लगता है। काला तो नहीं, पर उसकी वो पावर ही चली गई जैसी उसके अंदर की, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति कैसा होता है ना, झुर्रियों वाला। एक वृद्ध, एक जवान टमाटर, एक वृद्ध टमाटर। देखो बच्चे में कैसी रौनक है, ये है फ्रेश टमाटर। और कोई बूढ़ा हो जाता है तो और बूढ़ा हो जाता है तो लकड़ी, दांत गिर गए, सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देता, झुर्रिया ही झुर्रिया। ये है टमाटर जिसको पकाया गया है। इसके लिए टमाटर इन नेवर नेवर नेवर, उसको तो बिल्कुल आग में डालना ही नहीं है। टमाटर हमेशा अलग से ही हो, बिकॉज साइंटिफिकली टर्न्स इनटू एसिडिक। हमारा शरीर जो है ना अल्कलाइन है, उसको अल्कलाइन फूड ज्यादा चाहिए। अल्कलाइन में वो सारे फ्रेश आता है, जो कुछ उसमें डाला जाता है सब एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होता है तो फिर उसके बाद में नई नई समस्या चालू होती है। और उसका भी यहाँ क्या बना रहे, जैम, और उसको लगते हैं लंबे समय के लिए रखते हैं उसको, और उसमें भी क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, वो तो डाल दिया वो भी ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, उसमें वो क्या कहते हैं फ्लेवर, उसमें कलर, और क्या क्या डालते हैं इसमें, हजार चीजें डालते हैं टमाटर जो भी आग में डाला अर्थात बूढ़ा हो गया। हाँ कच्ची खाओ, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तीसरा बेकरी, बेकरी में सब कुछ आएगा, बहुत बड़ा है बेकरी का साम्राज्य। बेकरी को तो हमें देखना ही नहीं है, ये हमारा आहार ही नहीं है, कितना हाय वो जो चीज अवन में गई वो गई, वो हमारा आहार नहीं है। सारी बेकरी, बेकरी में क्या क्या आएगा, बिस्किट्स, बिस्किट में अनाज है, बिस्किट में उधर शक्कर है, उसमें नमक कितना ज्यादा है, एक ब्रेड में कितना नमक होता है, सब कुछ होता है उसमें। तो इसमें और क्या क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, हाँ वो अभी चौथा है, चौथा मैदा। ये चार चीजें जो है इनको सदा के लिए, ये आज के लिए नहीं है, ये पुरुषार्थ है, ये आज का है, कल का दूसरा था, उसके पहले का दूसरा था, कल कुछ और होगा, पर ये आज का सदा काल के लिए है। तो अचार बाहर, जैम कैंसल, जो खाना है वैसा ही खाओ, जैम बना के नहीं, टमाटर काटो और खाओ चुपचाप। बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, बिस्किट खाते हैं, बिस्किट यहाँ खाने की आदत होगी ना, अगर संसार में बाहर जाओगे भोजन नहीं मिला तो क्या करोगे, बिस्किट खाओगे। उधर फल रखे पर फल खाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आदत एडिक्शन इसका है, और फिर कहेंगे बाबा ने तो कहा है पाव रोटी ये खाओ वो खाओ, डबल रोटी पाव ब्रेड ये सारे जो है ना वो इसमें आता है। और लास्ट चौथा है मैदा, मैदा रिफाइंड फ्लावर, ये जो है ना ये चिपकता है जाके आंतों में और लंबा लंबा समय चिपका रहता है, वो निकलता नहीं है बिल्कुल भी। वो जो तंदूरी रोटी होती है ना उसको ठंडी हो जाने दो, ठंडी हो जाने दो, दूसरे दिन उसको तोड़ने की कोशिश करो, क्या होती है, टूटती है क्या, और इमेजिन वही पेट में गई है और वहां पड़ी हुई है, वो जाएगी आगे, कब्ज सबसे पहला चीज ब्लॉक कर देता है इंटेस्टाइन को, सीवियर कॉन्स्टिपेशन करता है। वो तो छोड़ो, पर उसमें एक एडिक्शन भी है, उसमें टेस्ट है, वो खींचते रहता है, और वो नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, कि वो चाहिए ही चाहिए। और वो छोड़ेंगे जिस दिन बनी है, उस दिन त्याग पुष्ट होगा, उस दिन संकल्प पुष्ट होगा, उस दिन जीत होगी संकल्प की। जो सारा संसार कर रहा है वो हमने नहीं किया, ये अपनी अपनी जीत है, किसी को दिखाने की यहां कोई बात ही नहीं, ना किसी को बताने की बात है। तो ये कितने नंबर का पुरुषार्थ है आज का, पांच नंबर का पुरुषार्थ। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो सिंपल है, कोई तो कभी खाते ही नहीं होंगे पिकल, कई वो तो पसंद ही नहीं बिल्कुल, अचार बचपन से ही पसंद नहीं है, ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें बचपन से ही पसंद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ओपीडी में, हम उनको चॉकलेट देते रखे कभी, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे चॉकलेट पसंद ही नहीं है, उसकी माँ कहती है चॉकलेट इसको कभी भी पसंद नहीं है। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमको शक्कर कभी अच्छी ही नहीं लगी जीवन में, हम कभी नहीं खाते शक्कर, क्यों नहीं खाते, ऐसे ही सहज स्वभाव ही है वैसा। तो ये हो गया डाइट, और लास्ट आज का पुरुषार्थ छठवा, ये मोबाइल को सकाश नहीं, उसका चिंतन करते हुए कैसे, तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। एकांत में बैठकर इसमें जो कुछ है वो देखना है और उसको सकाश देनी है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स एक एक कॉन्टैक्ट जितने याद आते हैं सबको सकाश, फिर फोन, फोन नंबर्स, फिर मैसेजेस, फिर व्हाट्सएप, उसमें यूट्यूब, ये सबको सकाश दो प्यूरिटी की, ताकि जब हम इसको यूज करें तो कोई भी अपवित्र कर्म इस मोबाइल के द्वारा हमसे ना हो। जो मोबाइल जीवन का अंग है उसके कवर को सकाश दो, ये व्हाट्सएप को सकाश दो, हर चीज को सकाश दो, इसके गूगल को सकाश दो, हर चीज को, ताकि ये सुबह ही काम करना है, ताकि हमारे हाथों से, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा मोबाइल से विकर्म हो रहे सूक्ष्म में, एकांत में। ऐसा कुछ भी हम इसमें नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ भी इसमें से हम नहीं करेंगे जिससे अपवित्रता हो, और जिससे भी बात करेंगे उसको प्यूरिटी के वाइब्रेशन, वो तो काम करना ही है, शूट एट साइट वाला, शूटिंग तो चालू ही रहनी चाहिए दिन भर, जो दिखा उसको अपनी गन, कीप द गन लोडेड, गन को लोड करके ही रखना है. दिखा चलाया, दिखा चलाया, जो जो दिखा उसको प्योरिटी की किरणें देते गए, देते गए, देते गए. तो आज की ब्रह्मचर्य की साधना में, आज का साधना का तीसरा दिन, एक एक दिन महत्वपूर्ण हो, एक एक दिन आत्मा को हिला दे, चेतना को अंदर से हिला दे. तो छह बातें कौन कौन सी देखी. सबसे पहले इंद्रिय सुखों के 8 दोष. आज सारे दिन भर जो कुछ खा रहे, पी रहे, जो कुछ कर रहे, आंखों से देख रहे, सुन रहे, उन 8 दोषों का चिंतन करते रहना. दूसरा अव्यक्त मुरली. उस अव्यक्त मुरली का कितनी बार अध्ययन करेंगे आज, कितनी बार करेंगे, 3 बार ज्यादा हो गया. सही सही बताओ कितनी बार करेंगे. 24 मार्च 1982, ये पवित्रता पर मुरली है जिसमें से हमने पढ़ा था. तो इस मुरली को अच्छे से पढ़ना है, एकांत में पढ़ना है, या तो तब तक पढ़ना है जब तक याद ना हो जाए. पूरी की पूरी याद, पूरी की पूरी याद कर लेना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है. और वो याद करना ये लक्ष्य नहीं होता है, समझना लक्ष्य होता है. याद तो अपने आप हो जाती है, जैसे हमको उसके ऊपर कुछ बोलना है तो बहुत अध्ययन करना पड़ता है गहराई से. ये हो गया दूसरा. तीसरा अभ्यास, किसी को देखते ही प्योरिटी की करंट देना. चौथा अभ्यास स्नान. स्नान कैसे करना है, पहले ठंडे गर्म से चालू करके ठंडे से ही एंड करना है उसको, निकलते समय ठंडा और रगड़ना है पूरे शरीर को. चौथा अगला अभ्यास भोजन. भोजन में 4 चीजें सदा के लिए टाटा. आचार कितना भी हो, आचार अर्थात भ्रष्ट चीज है वो, जाम अर्थात भ्रष्ट चीज है वो, ये मैदा अर्थात भ्रष्ट चीज है, इसको सदा के लिए मन से निकाल दो. दूसरे खाते रहे, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, ना ही हम उनको शिक्षा देंगे कि आप नहीं खाओ हम भी नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है. तुम चलने दो, चाहिए तो उनकी सेवा भी करो, जो जिसको चाहिए, हम उनका कोई विरोध नहीं. परंतु ये हमारा अपना संकल्प है. जैसे डायबिटिक पेशेंट होता है, वो नहीं खाता है, भोग है, वो कहता है नहीं नहीं मेरी शुगर 300 है, मैं कैसे खाऊं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, खत्म, तुम भले खाओ. हाँ, और क्योंकि क्या, ये किसी को समझाने से कोई समझता नहीं है, ये इंटरनल कन्विक्शन है. जब तक खुद स्वयं व्यक्ति संकल्प नहीं करता, और लक्ष्य केवल भोजन का नहीं है, लक्ष्य है ब्रह्मचर्य का, लक्ष्य इंद्रिय जीत बनने का, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लक्ष्य स्वाद से मुक्ति का है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है. इसलिए अध्यात्म में कोई भोजन ही सब कुछ नहीं है, 10 चीजें हैं तो भोजन एक है. केवल भोजन भोजन ही करते रहेंगे और 9 नहीं करे तो कुछ नहीं होने वाला, वही फंस रह जाएगा, भोजन में फंसे रहेगा, कुछ नहीं खाता है, पर वो बाकी 9 चीजें भी तो करनी है. फूड इज नॉट एवरीथिंग. इसलिए हर एक का टाइम अपना अपना है, भोजन में पुनर्जन्म का. इसलिए हम जबरदस्ती इसके लिए तो कर ही नहीं सकते. इंग्लिश में कहा जाता है यू कैन चेंज मैंस रिलीजन बट नॉट इज डाइट. आप किसी व्यक्ति का धर्म बदल सकते हो, भोजन नहीं. वो जो खा रहा है ना वही खाएगा. साउथ इंडियन वालों को कहो कि भाई तुम बाबा के बने हो ना, अब ये रोटी खाओ, कैसे खाएगा. बाबा का हूं, बाबा से प्यार है, पर ये नहीं खा सकता, वो चाहिए मुझे, चावल ही चाहिए, इडली दो. वो एक अभ्यास. तो इसमें और एक क्या बताया, अचार, जाम, बेकरी, बेकरी प्रोडक्ट्स. ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स है ना, ये भी एडिक्शन जैसा है. बिस्किट 3 खाए रुकता है वहीं, पूरा पैकेट खत्म हो जाना चाहिए. वो क्रैक जैक, 50-50, पार्ले जी, ये खाओ और बाजू में रखा रहने दो, और कोई देखने वाला है नहीं. 3 क्रैक जैक खाने के बाद में कोई व्यक्ति रुकता है, नहीं रुकता है, भूख नहीं है, फिर भी पूरा तो करना ही है, और पूरा होने के बाद और कहीं है क्या, बैग में हाथ डाल के देखता ही है, एक दूसरा तो था पता नहीं कहाँ है, पर किसी से मांगेगा नहीं, मिल जाए तो खा लेता है, कभी दुकान में जाके खरीदता नहीं है. पर कोई बहन आ गई, कोई भाई आ गए, भाई ये लोग टोली, बाबा के घर से, बाबा की बेकरी है, बाबा के घर एक भाई है बेकरी चलाता है, उसने खास आपके लिए भेजा है. हमने आज तक कभी खाया नहीं, पर वो भाई ने खास भेजा है, बाबा का बच्चा है. खाना चालू किया, करते 2 दिन में 4-10 पैकेट पूरे हो गए. तो ये कौन सी अवस्था थी, ये तो हार हो गई अचानक से. फिर 10 साल खाया ही नहीं, फिर अचानक खा लिया. संकल्प चाहिए, नो बेकरी, बेकरी आउट. अगला क्या बताया, मैदा. मैदे की कौन कौन सी चीजें हैं, मैदे की चीजें कौन कौन सी है, मैदे की चीजें कौन कौन सी है, छोले भटूरे, वो तो सबसे फेवरेट है कई लोगों का. कहाँ हाथ डाल दिया, ये तो हमारे एकदम अंदर रखी थी चीज, इधर छिपा के. जलेबी में भी जलता है क्या? हाँ, तो वो सारा, वो हर चीज, एक चीज का संकल्प कर लिया तो ये चीजें अपने आप छूटती है, कि हमें वो चीज जिसमें ये है नहीं लेनी है, ये संकल्प कर लिया कि ये अपने आप ही चली गई। अब इसको एक एक का थोड़ी ना संकल्प करते पड़े, आज ये बना तो मैं वो नहीं लूंगा, ये बना तो वो नहीं लूंगा, कुछ नहीं। किसका हृदय विदीर्ण हो रहा है सुनते सुनते ये क्या बोल दिया नहीं, विद्रोह कर रहा है मन, हो रहे पीछे तीन चार लोग ये क्या कह दिया हाँ चलो ठीक है। और लास्ट पुरुषार्थ बताया, इस मोबाइल को सकाश। अच्छा, ओम शांति।